Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
और जितने भी दुख है वो अपूर्णता में है, वो परिच्छिन्नता में है, वो उसमें और कुछ नहीं, ना सही ज्यादा साधना। तो इतना ही सोच लो कि जब मैं इस मेज को कह रहा हूं कि इससे भी बढ़िया है, और फिर इससे बढ़िया मैं कहीं से ला भी नहीं सकता, दिखला भी नहीं सकता, तो इसका अर्थ ये है कि मेरे अंदर कोई ऐसा तत्व है वो अपने आप में पूर्ण है, जो इंद्रियों के माध्यम से अभिव्यक्त होकर बाहर की चीजों को अपूर्ण कह रहा। तो मैं उस पूर्ण की तरफ जाऊं, उसका एक उदाहरण आपको स्वप्न मिल जाएगा कि स्वप्न में कोई नहीं होता, अपने आप ही सब बने हैं, जो भी बने। स्वप्न में जो कुछ भी बने हुए इसी को आत्मा का विलास कहते हैं, आत्मवैभव कहते हैं। स्वप्न में बिना किसी की सहायता के हम दृश्य भी बने, दृष्टा भी बने। वो तत्व जो स्वप्न बना उसको आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि देखने से आप अलग और वो तत्व अलग होगा। जब तक ये बना रहेगा मैं अलग और वो अलग, तो वो दृश्य होगा, दृश्य होगा तो नष्टवान होगा, परिवर्तनशील होगा सब। लेकिन एक सूत्र है ये आत्मचिंतन का, और ज्यादा चलो इतनी बारीकी में बुद्धि में ना भी जाए, क्योंकि बुद्धि प्रतिभा मेधा मनीषा प्रमा और रितंबरा, ये बुद्धि के भेद हैं। बुद्धि भी, बुद्धि का अर्थ आम आदमी तो चलो बुद्धि ही लेता है, लेकिन रितंबरा तक पहुंचे हैं तो बुद्धि चेतन में बदल जाती, बुद्धि नहीं रहती, चेतन ही चेतन रह जाता। जैसा अन्य साधनाओं में कि हम ये करें फिर ये करें फिर ये करें फिर ऐसा करें फिर वहां पहुंच, ऐसे ही जब बुद्धि के बारे में सुख, क्योंकि ये जितने भी शब्द बने हुए हैं कि ये बुद्धि है, ये इस समय मेधा है, देखो बुद्धि में समझने की क्षमता है कुछ चीजें, कई लोग हैं उनको समझ बड़ी है, जल्दी से समझते। कई ऐसे हैं वो याद रखते हैं चीज को, कई ऐसे हैं वो समझते सब कुछ है, याद नहीं रहता, भूल जाएगा। तो जो याद रखने वाली बुद्धि की का रूप है उसको मेधा कहते। चलो इसमें ये सातों नाम लेके एक एक की व्याख्या करें तो हम थोड़ा अपने विषय से भटक जाएंगे, लेकिन ये जानने लायक वस्तुएं हैं। क्योंकि खाली ये कहना बुद्धि बुद्धि, इसमें बुद्धि नहीं है, इसमें बुद्धि की कमी है, इसमें बुद्धि का वो है, ये कोई सिद्धांत नहीं है। क्योंकि बुद्धि, हमारे ऋषियों का यह चिंतन है कि बुद्धि जितनी जन्म के समय जिसको मिली बस उतनी ही रहनी, बुद्धि बढ़ाई नहीं जा सकती, कम या ज्यादा नहीं की जा सकती। बुद्धि को जैसे आपकी कार है, कार का हॉर्स पावर जो है कि ये 5 हॉर्स पावर की है, 11 हॉर्स पावर की है, 2 हॉर्स पावर की, वो हॉर्स पावर फैक्ट्री से बन के आ गया जितना उतना ही, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। वो जिस समय बने जितनी हॉर्स पावर की, अब कोई भी दुनिया का मैकेनिक, अच्छे से अच्छा मैकेनिक भी हॉर्स पावर को नहीं बढ़ा सकता, बाकी सब कुछ उसमें कर सकता है। इंजन को और बढ़िया कर सकता है, उसमें कोई डिफेक्ट हो दूर कर सकता है। लेकिन हम ये कहें कि ये 11 हार्स पावर वाली को 18 हार्स पावर की बना दे, वो उसके बस की बात नहीं। ऐसे ही ये बुद्धि की बात है। जब बुद्धि पर विचार करते हैं मन बुद्धि चित अहंकार अंतःकरण को लेकर, तो फिर बुद्धि की चेतना से बुद्धि का संबंध, और फिर इसी बुद्धि को मैकेनिक क्या करता है कि वो इस जितनी भी है उसका प्रयोग कैसे करे। सफल वो लोग होते हैं जो बुद्धि का प्रयोग ठीक करते हैं। वो सफल नहीं होते जिनकी बुद्धि बहुत है। बहुत बड़ी बुद्धि वाले तो मतलब महा ठग, बहुत बड़े धोखा देने वाले भी हो सकते हैं। उनमें कितनी तीक्ष्ण बुद्धि है जो यहां पर बैठे बैठे अमेरिका के बैंक में लोगों के पैसे हैं और वो निकाल लेते हैं यहां से। बुद्धि की कमी नहीं है, लेकिन वो रहेंगे जेल में ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। उनकी इतनी तीक्ष्ण, इतनी तीव्र बुद्धि भी उनको संसार में सफलता नहीं दिला पाई, क्योंकि वो बुद्धि होने पर भी उसका प्रयोग नहीं ठीक कर पाए, उसका सदुपयोग नहीं कर पाए। तो जितनी भी बुद्धि है, सफलता उसको मिली जिसने उसका उपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग, तो बुद्धि का सदुपयोग हो, ये शास्त्र है कि अगर उसका हम सदुपयोग करते हैं, सात्विक बनाते हैं, तो फिर सारे सुख मिलते हैं, नहीं तो हम दुख में ही रहेंगे। तो यहां पर बात फिर वही आ गई कि जो हम एक आत्म प्रत्ययसार एक शब्द था, तो प्रत्यय की बात का अर्थ है पूर्णता, और वो पूर्णता स्वाय आपके अपने में और कहीं नहीं। देखो, अगर सचमुच में भी भगवान कहीं आ जाए आपके सामने, आप उसमें भी नुक्स निकाल दोगे कि इससे भी बढ़िया हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें रहते हो तो पूर्ण, क्योंकि आप ब्रह्म हो, जो आपके सामने आया वो भगवान हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, कोई अवतार हो सकता है, लेकिन ब्रह्म तो आप ही हो, जिससे ऊपर कोई नहीं। ब्रह्म का मतलब है जिससे ऊपर कोई नहीं। दुनिया की कोई चीज भी बने, अच्छी से अच्छी मूर्तियां, कितना कुछ भी जोर लगा के बनाओ, लेकिन देखने पर आप फिर कह दोगे कि अभी इससे और भी बढ़िया बनेगा। लोग करते हैं, प्रतिवर्ष उत्सव करते हैं और फिर संकल्प करते हैं कि अगले वर्ष इससे भी उत्तम बनाएंगे। इसका मतलब है उत्तमता तक, पूर्णता तक पहुंच नहीं पाएंगे वो कभी भी। पूर्णता तक तभी पहुंचेंगे जब अपनी पूर्णता का एहसास हो कि पूर्ण तो मैं ही हूं। जब तक मेरे में कमी है अंदर कोई, तब तक मैं बाहर की चीजों से उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा। लेकिन चेतन में कोई कमी नहीं होती, चेतन में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। चेतनता में ऐसा नहीं है कि आप ये कहो कि चेतना में ये छोटी चेतना, ये बड़ी चेतना, ये ऐसा, उसमें कुछ नहीं। चेतना जिन माध्यम से अभिव्यक्त होती है वो छोटी बड़ी होती। यहां सब माध्यमों को छोड़ने की बात, जब वो कहते हैं अदृष्टम, अदृष्टम का मतलब है जो दिखलाई ना दे। अदृष्टम का मतलब है जो आंख से दिखलाई नहीं देता। देखो, जहां शास्त्र की एक विशेष बात है समझने के लिए कि जब वहां शब्द आंख आएगा तो सभी ज्ञान इंद्रियां इसी में आ जाएंगी, वो एक एक को नहीं गिनवाएंगे, क्योंकि आंख ज्ञान इंद्रियों में प्रमुख है। हमें जो ज्ञान होता है, पांच हमारी ज्ञान इंद्रियां, कान है, आंख है, त्वचा है, नासिका है और रसना। ये पांच ज्ञान इंद्रियां, रसना से रस का पता चलता है, हमें ज्ञान होता है, आंखों से रूप का ज्ञान होता है, कान से शब्द का ज्ञान होता है, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है और घ्राण से गंध सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है। तो ये पांच ज्ञानेन्द्रियां, जो ही ये शब्द आ जाए अदृष्टम, तो उसमें बाकी सब को आप ले लो कि ये ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं। कौन ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं? जिसको आत्मा कह रहे, आंख से उसे देखा नहीं जा सकेगा, कान से उसको शब्द रूप में सुना नहीं जा सकेगा, त्वचा से उसको छुआ नहीं जा सकेगा, जबान से उसको चखा नहीं जा सकेगा, नाक से उसकी कोई गंध सुगंध नहीं ली जा सकेगी। क्यों नहीं ली जा सकेगी? क्यों इनकी पकड़ में नहीं आएगा? क्योंकि ये जितनी चीजें हैं ये परिवर्तनशील है। आप आंख से जो कुछ भी देखते हो वो परिवर्तनशील है, बदल जाएगा, और जिस तत्व की हम बात कर रहे हैं उसमें परिवर्तन नहीं, इसलिए आंख की वहां तक पहुंच नहीं। जो कुछ भी आंख से आप देखोगे परिवर्तनशील है। दूसरी बात यह भी है कि अगर वो कोई ऐसी चीज आपको मिल जाए परिवर्तनशील नहीं है, तो उसे आप परिवर्तनशील बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आंख एक ही तरह की रूप को देर तक नहीं देख सकती। ये जो रोज हम कपड़े बदल लेते हैं, रोज जो स्टाइल बदलते हैं, ये जितने भी ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि रोज हम एक जैसी शक्ल नहीं देख सकते, अपनी भी नहीं देख सकते, तो इसलिए वहां जाके ब्यूटी पार्लर में कुछ 10-20 हजार रुपया दे के जो बाल पहले लेफ्ट की ओर से उन बालों को राइट को करके आ गए तो खुश हो गए कि अब कुछ बन गया। क्योंकि आंख को अगर कुछ मिल भी जाए, अव्वल तो कुछ मिलना नहीं जो एक जैसा, कुछ मिल भी जाए तो एक जैसा आप नहीं देख सकते। इसलिए प्रायः घरों में भी ड्राइंग रूम का फर्नीचर इधर से इधर, उधर से उधर, कभी कुर्सी यहां उठा के रख दी, वो वहां रख दी, जो फोटो उस कोने पर थी वो इस कोने पर लगा दी, जो फूलदान यहां था वो वहां, ये हम करते रहते। लेकिन जिस तत्व की हम बात करते हैं वो तो टस से मस नहीं होता। इसलिए आंख से जो कुछ भी देखा जा सकेगा वो निश्चित रूप से परिवर्तनशील है। अगर वो परिवर्तनशील नहीं तो आपकी आंख उसे गवारा नहीं कर पाएगी देर तक। लेकिन जिस तत्व की हम बात करते हैं उसमें तो कभी न्यूनता आती ही नहीं, वो तो प्रति क्षण वर्धमानम, उससे जो प्रेम है वो कभी कम नहीं होता। संसार का प्रेम तो कम होता है, लेकिन उसके साथ प्रेम जब हुआ तो प्रतिक्षण वर्धमानम, वो तो हर क्षण बढ़ता ही जाएगा। उसी को ही देखते रहेंगे, उसी को ही कर दो। देखना कुछ नहीं, असल में वही देखने वाला। जब हम इस बात को समझ गए कि देखने वाला कोई और है और बीच में से निकल गए, तो सीधा कनेक्शन देखने वाले का और जो दिखलाई दे रहा हमारा, हम फिर तमाशा देखने वाले रह गए। नाटक देखते हुए कभी भी उभोगे नहीं। नाटक होता रहे, डांस होता रहे, कठपुतलियां नाचती रहे, कभी लड़ पड़े, कभी गिर पड़े, कभी कुछ हो, आपका मन लगा रहेगा, उसमें कोई बात नहीं। तो जब आपका मतलब बीच में अहम को दूर करना, वो दूर होते ही वो परम चेतन जो आंखों के माध्यम से देखता है, जब आंखें नहीं होंगी वो तब भी देख लेगा। उदाहरण उसका स्वप्न ही है, स्वप्न में वो बिना आंखों के देखता है, और प्रमा के माध्यम से जागते हुए भी इन आंखों को बीच में से अलग कर देना है, ताकि वो जो स्वप्न में देख रहा था वो जागते हुए भी वही देखे। उस बुद्धि को जो साधना के द्वारा अर्जित की जाती है उसको प्रमा कहते हैं। वो भी बुद्धि, एक ये भी बुद्धि है जिससे मैं समझा रहा हूं, आप समझ रहे हैं, लेकिन ये प्रमा नहीं। प्रमा तो तत्व ग्राही बुद्धि, वो तत्व को पकड़ती है, अतत्व को छोड़ देती है। ये बुद्धि का अभ्यास है, करते करते बुद्धि हो जाती है वैसी, अगर हम चेतना की ओर बढ़े, साधना की ओर बढ़े, तो वो वैसी हो जाती। साधना की ओर कैसे बढ़ेंगे, ये ओम के माध्यम से समझाया गया है। आऊ मां की जो बात है वो साधना पक्ष है इसका, और जो मैं आपसे अभी ये श्रुति की बात कर रहा हूं ये सिद्धांत पक्ष। दो बातें होती हैं, सिद्धांत और साधना। सिद्धांत समझ में आ जाए ठीक से तो फिर साधना शुरू होती। अगर सिद्धांत ठीक से समझ नहीं आया तो साधना हमें कहीं नहीं ले जाएगी। सिद्धांत हमारी मंजिल को तय करता है कि जाना कहां है। जब ये निश्चित हो जाए और स्पष्ट हो जाए कि जाना अमुक जगह पर है, फिर यात्रा शुरू करो, फिर आप अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। और अगर मंजिल का पता नहीं और चल पड़े हैं तो फिर कहां पहुंचेंगे इसकी कोई बात नहीं। तो बिना सिद्धांत को ठीक से समझे यात्राएं कभी सफल नहीं हुई। इसलिए आम आदमी की ये शिकायत है, वो कहते हैं जी सारी उम्र हो गई ये करते हुए, ये मंत्र करते हुए, या ऐसा करते हुए, या वहां जाते हुए, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं आया। उसका कारण ये है कि हाथ क्या आना चाहिए था उस बारे में आप निश्चित नहीं। पहले ये तो पता लगे कि आप क्या चाहते। साधना तो तभी ठीक होगी। चलने को चल रहा हूं लेकिन नहीं खबर हूं मैं सफर में या मेरी मंजिल सफर में है। जा रहे हैं लेकिन जितना जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतनी उतनी मंजिल दूर होती जा रही। कारण उसका मंजिल का सुस्पष्ट ज्ञान ना होना। इसलिए सिद्धांत पक्ष पर भी उतना ही जोर है और साधन पक्ष पर भी उतना ही। देखो अगर मंजिल का तो पूरा पता हो, रत्ती भर भी उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम चले ही नहीं वहां जाने के लिए, तो उसमें हम थोड़ी प्रतिष्ठा तो ग्रहण कर सकते, थोड़ा झूठ का सहारा लेकर बड़ा वो कर सकते। बहुत वर्ष पहले का मतलब है कि 1957-58 की बात मुझे याद है कि कम से कम 2-3 वर्ष मैंने ऐसा किया खूब। तो मुझे इतिहास का बहुत शौक था, इतिहास पढ़ने में बड़ी रुचि थी, और यूरोप के इतिहास का मैं अपने टाइम का उस समय का मतलब अच्छे जानकारों में से था, स्कॉलर माना जाता था। तो यूरोप का इतिहास पढ़ पढ़ के मुझे गांव तक कि किस देश का ये कैपिटल है, कि वहां चले गए अगर स्पेन में तो मैड्रिड है, मैड्रिड उसकी राजधानी है, मैड्रिड से 150 किलोमीटर ये गांव है, उस गांव में ये म्यूनिसिपल कमेटी है, ऐसा ऐसे जवानी याद। तो कभी किसी को मिलना जब अपने यार दोस्तों में कभी गए, 2 महीने बाद गए तो उन्होंने कहना कहां गया था, तो मैंने कहना पुर्तगाल में था, 2 महीने गया कभी नहीं, और वहां की किस्से सुना देने सारे कि वहां से जाओगे फिर ये गांव आएगा, आगे जाओगे, ऐसे ढंग से सुनाता था कि वो इतने प्रभावित होते थे कि अभी अभी लौटा है फौरन। वो चाहे सुसेक्स की बात हो, ईसेक्स की हो, स्कॉटलैंड की हो, कहीं की भी। तो इसका अर्थ ये है कि वहां की मंजिल का तो बड़ा स्पष्ट ज्ञान था, और जनसंख्या वहां की आज कितनी है ये जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये बहुत मामूली बात है। आज तो इतने इतने बच्चे जानते हैं कि वहां की दुनिया के किस कोने में कितनी जनसंख्या, कि उस समय जरा सन 58 में इस तरह की बातें करने वाले कम थे। अब वो नॉलेज इतना हो गया है कि बैठे बिठाए आप, अब कंप्यूटरों को तो छोड़ो, अब तो मोबाइल से ही दुनिया भर का पता लग रहा। कल एक ये बतला रहे थे, कोई आए हुए थे मिलने, कि अगर कोई घर से गया है किसी जगह पर है तो वो इस समय कहां पहुंचा है, किस जगह पर है, मोबाइल पर उसकी फोटो आ जाती, केस चौराहे पर खड़ा है, वहां वो ये है, वो ऐसा हो। तो अब तो कोई वो बात नहीं रही। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि अगर मंजिल का भी पता है और हम चले नहीं तो तब भी नहीं पहुंचे, गए कभी नहीं तो बातें कर करके भी वैसे के वैसे ही रह जाए। मंजिल बहुत स्पष्ट हो, फिर साधना उसी मंजिल के अनुरूप। अगर हमें मंजिल का तो पता है, ये तो पता है बिल्कुल कि मुझे पहुंचना है उल्हासनगर, और उल्हासनगर का भी पूरा ज्ञान हो, लेकिन मैं बैठ गया हूं उस गाड़ी में जो अमृतसर जा रही है, तो फिर उल्हासनगर नहीं पहुंचूंगा। सफर तो होगा, गाड़ी भी तेज चलेगी, लेकिन उल्हासनगर कभी नहीं पहुंचूंगा। इसलिए साधना और साध्य का आपस में विशेष मेल है। जो ये कहते हैं ना कि कोई भी रास्ता अपना लो, ओम ओम करो तब भी ठीक है, अल्लाह अल्लाह करो तब भी ठीक है, सारे मंत्र एक जैसे होते हैं, सब एक जगह पहुंचेंगे, वो वस्तुतः कहीं भी पहुंचते नहीं। अगर ऐसा होता तो ये हमारे छह दर्शन नहीं बनते। छह के छह दर्शन ऋषियों द्वारा बनाए गए, कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। वेदांत उनमें एक है, ये उत्तर मीमांसा व्यास का एक है, जैमिनी ने अपने वो बनाए, कन्नाद ने अपना बनाया, गौतम ने अपना न्याय शास्त्र की रचना की, और योग शास्त्र की रचना करने वालों ने योग की। तो योग, सांख्य, ये सब साधन और साध्य, ये साधन भी बतलाते हैं। वो कोई साधन बतलाएगा कि समाधि तक पहुंचना, आखिरी आपकी जो जगह है वो निर्विकल्प समाधि, कैसे पहुंचना है उसके लिए वो यम नियम आसन प्राणायाम से शुरू कर दें, तब आप वहां पहुंचोगे। जिस किसी का भी, अब जैमिनी आपको बतलाएगा कि आखिरी मंजिल स्वर्ग है, वहां पहुंचना, तो कैसे पहुंचना है वो फिर कर्म का प्रतिपादन करेगा कि ये कार्यता है, ये कर्म है, कर ये करण है, तो कर्म करण, ये कर्मों की बात, ये वाले कर्म, ये निमित्त कर्म, ये नमैत्य कर्म, ये निष्काम कर्म, वो कर्मों क्या ही उसमें चलता रहेगा। कर्मों के माध्यम से चलोगे तो स्वर्ग तक पहुंचो, यम नियम आदि के माध्यम से पहुंचोगे तो निर्विकल्प समाधि तक पहुंचोगे, परमाणु आदि की खोज करोगे तो शांति तक पहुंचोगे। न्याय शास्त्र हमें शांति तक ले जाता है कि कैसे बिल्कुल शांत रहेंगे। तो इस तरह से सभी शास्त्रों का अपना अपना एक ढंग है। उपनिषदों का या वेदांत तो कहीं पहुंचना नहीं, वेदांत ये कहता है कि जहां पहुंचना है आप पहुंचे हुए, लेकिन आप उसे जान नहीं रहे कि मैं वहां पहुंचा। आप जो चाहते हो वो आपके अपने पास, ईश्वर को चाहते हो तो ईश्वर ही हो आप अपने आप को उससे अलग मान रहे। पूर्णता को आप ढूंढ रहे हो मेज में, कुर्सी में, कि ये पूर्ण मिल जाए, वो मिलनी नहीं, क्योंकि पूर्ण आप ही हो। और फिर वो ये बतलाएंगे कि इस पूर्णता का आपको एहसास कैसे। पहले तो पूर्णता कहते किसको है, वो ये समझा रहे हैं कि ये अदृष्टम, पूर्णता ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आप नहीं जान पाओगे। कि आप चाहो मैं आंखों से पूर्णता देख लूं, आंखें जो भी देखेंगी अपूर्ण होगा, जो भी देखेंगी आंखें वो अपूर्ण ही होगा। इसलिए भक्ति शास्त्र में भी जब कभी भगवान किसी को मिले हैं तो उसके हृदय में ही प्रकट हुए। ऐसा नहीं हुआ कि सामने खड़े आके हाथ मिलाया हो भगवान ने कि मैं आ गया हूं चलो बातें करें। पूरा पढ़ते रहो आप भक्ति को, अंत में आपको लगेगा भगवान उसके हृदय में प्रकट हुए। हृदय में प्रकट होने का मतलब है ये पता लग गया कि वो मैं ही हूं जिसको ढूंढ रहा। उम्र भर जिसके तजस्सुस में रहा सर गर्दां, वो आप वो हसीन आप ही था मुझे मालूम न था। तब पता लग जाता है कि जिसको मैं ढूंढ रहा था वो असल में था मैं अपने आप ही, इधर उधर भटक रहा। तो यहां पर मंजिल है पूर्णता। तो पूर्णता को समझा रहे हैं कि पूर्णता क्या है, क्योंकि जिसे हम पूर्णता समझ रहे हैं वो नहीं। हम आंखों से देख के चाहते हैं कोई चीज पूर्ण मिले और करते भी हैं कि ये ठीक है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो चीज भी हमें अधूरी लगती। कोई भी चीज बाजार से खरीद के लाते हैं, बहुत देख कर सोच कर सब लाते, लेकिन वो लाने के बाद फिर लगता है कि ये पूर्ण नहीं है, फिर हम कहते हैं इससे अच्छा था वो वाली ले आते तो ठीक। तो यहां अदृष्टम के माध्यम से वो पूर्णता की व्याख्या करने लगे। पूर्णता जब हमारी समझ में आ जाएगी तो पूर्णता का हम कैसे पूर्ण बन जाएं, उसके लिए फिर ओंकार ओम शब्द की व्याख्या की गई है कि उसका चिंतन ऐसे करो तो हम पूर्णता में जा पहुंचे। ओम साध्य है और ये साधन है, और अंत में साध्य और साधन की एकता बतला देंगे। ओम तत्सत्।